ओम शांति। आदरणीय भ्राता जी, बाबा की बगिया का रूहानी गुलाब भ्राता मोहन सिंगल जी, आपने अपने विद्यार्थी जीवन से ही बाबा को पहचान, विश्व कल्याण के भगवान के कार्य में अंगुली लगाकर गोवर्धन उठाने का प्रण किया। आपने इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद ONGC में ट्रेनिंग सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर रहे। आपने मम्मा बाबा की पालना ली। आपने पर्यावरण में भी कार्य किया। मानव संसाधन मंत्री की ओर से पर्यावरण श्री की उपाधि केंद्र सरकार ने आपको दी। डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स डेवलप किया। अनेक अभियानों का संचालन किया। साइंटिस्ट व इंजीनियरिंग के आप चेयरपर्सन भी हैं। हमारे ज्ञान सरोवर एकेडमी के कोऑर्डिनेटर भी हैं। विंग्स ऑफिस में 18 विंग्स की गतिविधियों को सुचारू रूप भी आप देते हैं। साकार मम्मा बाबा की पालना ली। साकार बाबा जब अव्यक्त हुए उस समय का सीन आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा। वो अनुभव हम सभी आपके मुख से सुनेंगे। भारत में आसाम, गुजरात, बिहार आदि में अनेक सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बने। आदरणीय भ्राता जी, आज क्लास का टॉपिक है निमित्त निर्माण, निमित्त और निर्माण स्थिति। हम सभी आदरणीय भ्राता जी को सुनेंगे। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर उस रीति से ओम शांति कहेंगे जैसा हम सब ने सुना है। यज्ञ के आदि में सब ब्राह्मण वत्स मिलके बाप दादा के निर्देशन में ओम की ध्वनि करा करते थे। पहले अंदर हम सब गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा गहरा श्वास लेंगे और उसको निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। परसों बाप दादा से हम सब ने ज्ञान मुरली सुनी रिवाइज्ड कोर्स की और आज सुबह भी प्रतिदिन की भांति हम सब ने मुरली सुनी और जरूर दिन भर में उसका चिंतन भी किया होगा। ये मुरली जो है ये आज के जो टॉपिक बहन जी ने बताया है उसका काफी हद तक समाधान भी देती है। आज का टॉपिक है निमित्त और निर्माण, कैसे बने निमित्त और निर्माण। हम सभी का जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता ही है और ये लक्ष्य जब से हम लोग ज्ञान में आए हैं तब से हम सब का एक ही लक्ष्य ये तो है ही है कि हमें अंत में कर्मातीत अवस्था को पाना है, फरिश्ता स्वरूप बनना है। और जैसा कि हम सब ने सुना है और जानते भी हैं, भक्ति मार्ग से भी सुनते आए हैं, अंतमति सोगति के ये हम सब लोग सुनते आए हैं और इस बात को हम सब लोग जानते भी हैं और पुरुषार्थ भी करते हैं कि अंत में हमारी जो गति हो वो ऐसी हो कि जैसी बाप दादा ने बताई है, कोई भी अंत समय याद न पड़े बाबा के सिवाय व्यक्ति, वस्तु, कोई वैभव, साधन, कोई भी चीज हमें स्मृति में न आए। तो इसीलिए आज का विषय भी उससे ही लगता है, जितना जितना हम अपने को निर्माण बनाते जाएंगे, निर्माणता से ही विश्व का परिवर्तन होता है, निमित्त बनाते जाएंगे, इन दोनों चीजों को विशेष करके अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम सब लोग स्वतः ही अवश्य ही विजय को, संपूर्णता को पालेंगे और कर्मातीत स्थिति का हम सभी को अनुभव अवश्य होगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, किस रीति से हमें अपने जीवन को मोल्ड करना है, पुरुषार्थ करना है, उस बात पर अभी हम सब लोग और विचार अवश्य करेंगे। तो ये जो दो बातें हैं, निमित्त और निर्माण बनना, बाप दादा ने इस पर काफी मुरलियां चलाई हैं, साकार मित्र भी बाबा कहते रहे हैं और अव्यक्त बाबा ने भी इस पर बहुत प्रकाश डाला है। तो निर्माण के भी बाबा ने कई अर्थ बताए हैं। एक तो निर्माण करना, जो चीज बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन होती है, निर्माण करते हैं, उसको भी निर्माण कहते हैं। बाबा कहते हैं निर्माण स्थिति, यानी बहुत ब्रॉड माइंडेड, बहुत ही विशाल दिल वाले हो और वो विशालता इतनी हो कि कोई भी आत्मा हमारे सम्मुख आए, कैसी भी भावना हो उसकी, उसके लिए हमने मानो कुछ नेगेटिव भी सुना हुआ हो, लेकिन हमारा हृदय इतना विशाल हो कि उसकी निर्माणता जो है वो अगर नेगेटिव सेंस में है, उसने हमारे सामने कुछ विपरीत परिस्थितियां पैदा की हैं, हमारे मार्ग में रुकावट डाली है, तो वो सब होते हुए भी हमारा हृदय इतना विशाल हो कि हम उसको क्षमा कर सके। और जब उसको हम क्षमा कर देते हैं, हमारे मन में कोई बदले की भावना न हो, और जैसे बाप दादा ने भी हमें परसों भी मुरली में बताया, अव्यक्त मुरली जो हम सब लोग सुन रहे थे, उसमें भी बाबा ने गाइड किया, क्या कहा, दुआ दो और दुआ लो, जैसी उसकी जैसी भी भावना हो, लेकिन हमारी भावना सद्भावना ही हो, दुआ हो, उसके लिए कल्याण की भावना हो, शुभ भावना हो। तो ये बाबा ने निर्माणता में एक और भी चीज बताई है। तो निर्माण करना, निर्माण करना, और ये निर्माणता को भी जितना जितना हम धारण करते जाएंगे, इसके साथ ही साथ बाबा ने दूसरा शब्द भी और दिया, एक कौन सा, निमित्त बनना। जितना जितना हम अपने को ये समझते जाएंगे मैं निमित्त हूँ, करण करावन हार वो है शिव बाबा, मैं तो सिर्फ करण हार हूँ और करावन हार बाबा, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करा रहा है। जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंपन आ जाता है, तो निमित्त भाव से तो हम दूर हो ही जाते हैं, होते ही हैं, लेकिन उस कार्य में सफलता की गुंजाइश भी हमारे पुरुषार्थ अनुसार सीमित ही रहती है। और जब बाबा को हम सम्मुख रखते हैं, साथ लेते हैं, तो हम सफलता मूर्त स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि बाबा रिस्पॉन्सिबल हो गया है। कोई भी पेपर आता है, बाबा ने कहा पेपर तो जीवन में आपके सामने हमेशा ही आएंगे। हम सब जानते हैं, जब से हम लोग ज्ञान में चले हैं, ज्ञान का कोर्स किया पहले कितने वर्ष, जब से ज्ञान शुरू हुआ और सप्ताह कोर्स भी चलने लगा, सप्ताह कोर्स हुआ, फिर उसके साथ बाबा ने कहा ज्ञान में चलो ही नहीं बल्कि थोड़ा फास्ट दौड़ी पहनो, तो पुरुषार्थ में और तीव्रता लाए, दौड़ी पहने। और फिर बाबा ने क्या कहा, दौड़ी तक ही नहीं, दौड़ना भी लिमिटेड होता है, हाई जंप दो। तो समय प्रति समय बाबा बताते रहे हैं और नई नई विधियां भी बताते रहे हैं, किस तरह दौड़ो, किस तरह हाई जंप दो। और वर्तमान समय बाबा क्या कह रहे हैं, बहुत समय से हाई जंप के बाद क्या होता है, उड़ना, ऊपर उड़ते हैं। जब अगर जमीन पर ही जितना हाई जंप दें, दौड़े चलें, तो बाधाएं जो रास्ते में आएंगी उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन अगर उड़ेंगे तो कोई भी बाधा पृथ्वी पर होगी, जमीन पर, वो हमारे मार्ग में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा मार्ग ही ऊपर है और उसमें तो नीचे की कोई भी रुकावट जो है हमारी गति को कम नहीं कर सकती। प्लेन में भी उड़ते हैं ना, तो प्लेन में उड़ के जाते हैं, नीचे चाहे कुछ भी हो, फ्लड हो, कोई रुकावटें हो, कोई भी समस्या हो, तो उनका असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए जैसे प्लेन में उड़ते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए जो फ्यूल है, पेट्रोल है, जिससे प्लेन उड़ता है, बहुत हाई क्वालिटी का चाहिए। जब पेट्रोल निकालते हैं, बहुत ऐसा क्वालिटी उसकी देखने में ही अच्छी नहीं, काला काला क्रूड ऑयल सब कुछ मिला होता है, फिर उसे जब रिफाइन करते हैं तो शुद्ध होता है, कुछ मिट्टी का तेल अलग हो जाता है, कोई दूसरी अशुद्धता अलग हो जाती है, तो रिफाइन होता है। थोड़ा भी रिफाइन और ऑर्डिनरी ऑयल वो जलाने के काम, रोशनी देने के काम भी आता है। और जब रिफाइननेस उसमें होती है तो उससे स्कूटर, कार, गाड़ियां वगैरह वो चलती है। और भी अगर इससे ज्यादा रिफाइन अगर चाहिए तो वो हवाई जहाज में यूज होता है, बहुत कॉस्टली हो जाता है जितना जितना प्रोसीजर से पास होता है। और जब रिफाइननेस होती है तो हमारे को बाप दादा ने बताया है कि आपको भी अपनी बुद्धि को, विचारों को, संकल्प को, इनको बहुत बहुत रिफाइन करना है। बाबा तो हम सबको शक्ति दे ही रहा है, बल दे रहा है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बाबा के पास हर बच्चे का टीवी सेट है। टीवी होता है ना, जब तक ऑफ रहेगा उसमें कुछ दिखेगा नहीं, ऑन होगा तो उसमें जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है, जो भी स्टूडियो से आ रहा है, वो दिखाई देगा। तो बाबा ने बताया हर बच्चे का टीवी सेट है, और जब कोई बच्चे के अंदर कोई कमी होती है, कमजोरी होती है, कोई ऐसा वो विकारी संकल्पों के वशीभूत होता है तो उसका टीवी सेट वो ऑन हो जाता है। बाबा को देखने में आता है तो बाबा देखता है ये बच्चे इस कमजोरी से पास हो रहा है तो चलो इसको इसमें से निकाले, तो बाबा ऊपर से उसको सकाश देता है, लाइट देता है, शक्ति देता है कि ये बच्चा इस परिस्थिति से पार हो। तो बाबा का ट्रांसमिशन, बाबा की शक्ति, वो तो पूरा जोर से बाबा भेज रहा है, लेकिन लेने वाले की भी तो बुद्धि ऐसी स्वच्छ होनी चाहिए कि वो बाबा की डायरेक्शन को कैच कर सके। इसीलिए बाबा कहता है अपनी बुद्धि को अभी आवश्यकता है क्या करने की, क्लीन और क्लियर बनाने की, साफ भी हो और स्पष्ट भी हो। चश्मा लगाते हैं ना, तो जो चश्मा लगाते हैं तो भाई साफ दिखे, स्पष्ट दिखे, लेकिन अगर मानो उस पर धूल चढ़ी हुई है, गंदगी है, तो भी साफ नहीं दिखाई देगा। और अगर चश्मे का नंबर कुछ और है जितनी हमें आवश्यकता है तो भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। इसलिए क्लीन और क्लियर वो हमारे जितनी दृष्टि होगी, संकल्प हमारे पावरफुल होंगे, उतना उतना हम निमित्त की ओर और निर्माणता की ओर और आगे बढ़ते जाएंगे। देखो बाबा कितना दयालु है, हम सब के ऊपर कोई भी पेपर आने वाला होता है ना, तो बाबा पहले से ही इशारा दे देता है। कोई भी परिस्थिति होती है, आती है और पहले से पता चल जाए तो व्यक्ति अच्छी तरह तैयार हो जाता है उस चीज को फेस करने के लिए। तो अभी बाबा ने बताया हुआ है कि अभी बच्चों के सामने ऐसे पेपर आएंगे। अभी तक तो जब पेपर आता है ना हमें पता चल जाता है, कोई पेपर आया मानो क्रोध आया, कमजोरी आई पता चल गया, अहंकार आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आया, बदले की भावना आई, तो ये सब निगेटिविटी देखने में आती है। हमें मालूम है कि ये सब कमजोरियां हैं, तो हम और सावधान होते होते आज यहाँ तक पहुँच गए हैं, बाबा के घर में बैठे हैं। हमें मालूम है क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से जैसे लगभग पार होकर यहाँ तक आ गए। तो निगेटिव को पॉजिटिव से अलग करना, समझना वो सहज है, लेकिन पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही डिफरेंशिएट करना, अलग करना, समझना, ये भी पॉजिटिव है भाई, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन मुझे कौन सा मार्ग पकड़ना है, कौन सा ज्यादा पॉजिटिव है, उसके लिए बुद्धि बहुत स्पष्ट चाहिए, क्लीन चाहिए, साफ चाहिए। तो बाबा ने अभी हम बच्चों को पहले ही बता दिया है कि अभी हाँ बच्चों के सामने जो पेपर हैं, तो एक पेपर तो जो है कोई भी चीज है तो वो कौन सा पेपर आएगा, और आता है कोई भी परिस्थिति पेपर को परखने और निर्णय करने की शक्ति हमारी स्पष्ट हो, साफ हो। ये चीजें तो इतना परख तो आ गई हम में कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को परखने की, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव में ही परखना या निर्णय, जैसे बाबा ने कहा है आप बच्चे कोई कैसा भी हो, किसी ने आपके साथ कुछ कैसा भी बर्ताव किया हो, व्यवहार किया हो, लेकिन आपको उसे दुआएं देनी है, शुभ भावनाएं देनी है, शुभकामनाएं देनी है कि जो वो आत्मा है उसके प्रति जरा भी हमारी निगेटिविटी ना हो। तो दोनों चीज ये ऐसा होते हुए भी हमें मालूम है वो मेरे मार्ग में बाधक बना हुआ है लौकिक रीति से या अलौकिक रीति से। कई बार लौकिक रीति से भी लोग बाधक बन जाते हैं तो लौकिक का तो पता चल जाता है, आप सब हैं, बांदेलियां भी होंगे, कोई बांदेले भी होंगे, कोई परिस्थितियां आई हैं, है? कोई विघ्न आते हैं और तो माया का प्रभाव हमें महसूस होता है। तो हम सभी को समझ लेते हैं एक तो ये बात कि ये माया, वैसे मोटी बात है, विघ्न और माया इसमें क्या अंतर है। विघ्न और माया मोटे तौर पर तो हम अक्सर करके सभी को कोई भी समस्या आती है ये देखो माया आ गई, प्रॉब्लम आ गई, लेकिन विघ्न और माया में बाबा ने अंतर भी स्पष्ट किया हुआ है। क्या अंतर है? विघ्न जो है वो बाहर से आता है, उसका कुछ स्थूल रूप भी हो सकता है, होता ही है, लेकिन माया जो है वो अंदर से आती है। विघ्न के फल स्वरूप कोई कमजोरियां पैदा हुई, संकल्प विकल्प पैदा हुए, तो वो माया जो है वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमारी बुद्धि को कुछ कलुषित कर देती है और फिर वो विघ्न जो है और माया का रूप ज्यादा ले लेता है। मानो आप घर से निकले, प्रवृत्ति में सब रहते हैं, अमृत वेले क्लास करने जाते हैं, गए जाने के लिए तैयार होके निकले घर से बाहर, बाहर देखा तो मानो स्कूटर पंचर है या कार पंचर है या जैसे भी जाना है साइकिल पर, जो भी साधन है वो साधन चलने लायक नहीं है, तो ये तो विघ्न आ गया बाहर से। लेकिन इसके फल स्वरूप जो अंदर में संकल्प विकल्प पैदा चलेंगे, अरे आज तो गुरुवार है, आज भोग लगाया था, आज वहाँ जाना जरूरी है, सेंटर तो यहाँ से बहुत दूर है, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, तो ये सब जो कमजोर और संकल्प क्या करूं, पॉजिटिविटी उसके लिए हम तैयार रहे, लेकिन वो कमजोरियों के वशीभूत न हो। विचार आएगा लेकिन उसका समाधान भी सोचें और समाधान बाबा की याद ही उसका समाधान दिला देती है, राइटियस पाथ पर, सही रास्ते पर। तो एक तो ये है कि हमारी निर्णय शक्ति और परख शक्ति ये वो होनी चाहिए इतनी कुशाग्र कि हम उस पेपर को पहचान सके, और उसके लिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, बाबा ने बताया उसके लिए एकाग्रता की शक्ति। हम बच्चों में अभी तक उतनी एकाग्रता नहीं आई है जितनी होनी चाहिए। हम सभी को अनुभव है, योग करने भी बैठते हैं, बुद्धि कभी इधर काम की तरफ चली जाएगी, उधर चली जाएगी, भाग जाती है बुद्धि इधर उधर ना चाहते भी, फिर बुद्धि को खींच के लाते हैं, फिर बुद्धि दूसरे तरफ दौड़ जाती है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि बुद्धि इधर उधर अगर जाती है तो क्या करें। मन बुद्धि को जो ब्रह्मा बाबा ने करा, आप सबने सुना होगा ना, बाबा ने बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा के पास से 2 डायरियां मिली, तो 2 डायरियां बाबा डायरी लिखते थे, तो एक डायरी में तो बाबा ने आप सबने सुना ही है ये लिख के पक्का किया जो जो संबंधी थे कि मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है आदि आदि, ये सब तो मालूम है आप लोगों ने पढ़ा है सुना है। और दूसरी उसमें बाबा ने जब ये देखा मन भागता है तो मन को पत्र लिखा, हे मन मैं आत्मा राजा हूँ और तू मेरा मंत्री है, हे बुद्धि तू मेरे सेनापति है, मंत्री और सेनापति तुम लोग इतने, तुम मेरे कर्मचारी हो, मैं राजा हूँ, तुम मेरे अंडर में हो, लेकिन तुम दोनों इतने बलशाली बन गए कि तुम दोनों जिधर जिधर भागते रहे मैं आत्मा राजा भी तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा, तुम्हारे वशीभूत हो गया। तो ऐसा करके फिर दूसरे पैरे में बाबा ने लिखा नेक्स्ट पैरा में कि लेकिन हे मन, अब मैं तुझे बता देता हूँ कि अब मैं तेरे वश में नहीं रहूंगा, तू मेरा कर्मचारी, अब तुम्हें मेरे अंडर में रहना होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वमान में स्थित हो रहा हूँ, हो गया हूँ। तो हम भी, हमारा मन भी क्यों भागता है? क्योंकि हम अपने स्वमान में टिकते नहीं। बाबा ने भी कहा, मुरली में भी बाबा ने कहते हैं स्वमान, एक मुरली में बाबा ने दिया बोला था कि बाबा ने 100 से अधिक स्वमान बच्चों को समय प्रति समय दिए हुए हैं, उन स्वमान को बुद्धि में लाओ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, सदा कल्प कल्पांतर की विजयी रही हूँ, ये परिस्थिति मेरे सामने आई है, लेकिन इसको तो मैंने बहुत बार पार किया है, कल्प पहले भी मैं विजयी बनी थी, अभी भी विजयी बन रही हूँ, और कल्प कल्प मैं इस पर विजय प्राप्त करती रहूँ। नेगेटिव कमजोरी का नहीं, बाबा क्या करूं, ये तो ये पेपर आ गया, नहीं, उसको भी अपने सब कॉन्शियस माइंड को, अपने अचेतन मन को, अर्ध चेतन मन को इतना स्ट्रांग करके वो पॉजिटिव भाषा ही स्वीकार करता है। जो हमारा अचेतन मन है, अर्ध चेतन मन है, तो इसीलिए उसको हमें यही कहना है, मैं विजयी, मैं कल्प कल्प के विजयी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा, बाबा आओ। बाबा रोज कहता है ना, रोज शक्तियों का दान दो, बस मंशा को अपने वश में करके आओ बाबा, चलो हम और आप चक्कर लगाने चलते हैं, नुमा शाम का समय है या प्रातः का समय है, बाबा कहता है मैं आता हूँ और बच्चों के सदगति, बच्चों अपने बच्चों के सिर पर मैं अपना वरदानी हाथ रखता हूँ, जो भी बच्चे अमृत वेले मांगते हैं बच्चों को मैं वरदानी स्वरूप, वरदानी मुहूर्त होकर दे देता हूँ। तो जब देने वाला तैयार है सर्वशक्तिवान परमात्मा, तो हम लेने वालों को क्यों कमी होनी चाहिए? तो इसी वो इसलिए कमी है कि हमारी एकाग्रता में कमी है। तो पहले तो हमें ये भी चेक करना है, हमारे सामने जितनी भी परिस्थितियां आए और आएंगी अंत तक, अभी तक भी आती रही हैं, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, दुख सुख, जय पराजय, ये सब जितनी भी परिस्थितियां हैं, हमें परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन हमें इनसे विजयी होकर के निकलना है। और वो कैसे होंगे? जब अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे। एकाग्रता को बढ़ाने का सिंपल उदाहरण आप सबको मालूम ही है, बचपन में आप सबने भी वो लेंस सूरज के सामने रखते हैं तो वो किरणें एकाग्र हो जाती है और नीचे जो भी चीज होती है, कागज, कपड़ा या वो एकाग्र, वो सब जल जाते हैं। तो एक तो हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाते चले, और बाबा ने कहा है एकाग्रता अकेले ही नहीं है, एकाग्रता के साथ क्या है, कई चीजें जुड़ी हुई है, एकांत, और बाबा ने क्या बोला, इकोनॉमी, जो इतने खजाने दिए हैं, संकल्प रूपी खजाना, समय रूपी खजाना, वाणी का, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, अनेक अनेक खजाने बाबा ने दिए हैं, उनकी भी इकोनॉमी, बस वो हमारे लीक ना हो, कमजोर ना हो। एक तरफ तो हम खजाने इकट्ठे करते हैं, दूसरी तरफ कई बार पुराने संस्कारों के वशीभूत होने के कारण वो संस्कार लीक कर जाते हैं। कोई चीज अगर आप डालते रहो और नीचे से वो लीक करती रहे तो कभी भी इकट्ठी होगी नहीं, भरपूर होंगे नहीं, वो लीक होते रहेंगे। तो इसीलिए एकांत भी चाहिए, बाहर का एकांत भी और मन का एकांत भी। और मन के एकांत के लिए तो जैसे बाबा ने पत्र लिखा वैसे हम लोग भी लिखें जब कोई परिस्थिति में हो। बाबा ने भी जैसा बताया ना, हम कोई परिस्थिति आई मानो किसी आत्मा से हमारी वो कहा सुनी हो रही है, कोई बहस हो रही है, तो या तो यही है जैसे अज्ञान काल में करते रहे, एक ने एक कही, दूसरे ने दो कही, फिर पहले ने चार कही, बात बढ़ती जाती है, या फिर ऐसा हो जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है, क्या हो, आप ऑर्डर करो। जब कोई भी ऑफिसर, बड़ा आदमी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो या गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई हो, जब तक अपनी सीट पर बैठा होता है सब उसका ऑर्डर मानते हैं, वो ऑर्डर करेगा ये काम करो ऐसे करो, करते हैं क्योंकि वो मालिक है, सीनियर ऑर्डर है ऑफिसर। और जब वो अपनी सीट से उतर जाता है, उसका कोई ट्रांसफर हो गया, कहीं रिटायर हो गया, या इलेक्शन में कोई हार गया, चला गया, पावर में नहीं रहा, फिर कोई भी उसका ऑर्डर नहीं मानता। तो ऐसे हम अपने स्वमान में स्थित होकर जब कोई शक्ति को ऑर्डर करेंगे वो शक्ति तुरंत आएगी, उसका आवाहन करेंगे तो ये हमें वो शक्ति आएगी और हमें निमित्त और निर्माण बनने में बहुत सहयोग देगी। तो इसीलिए निमित्त बनने के लिए एक ये आवश्यक है जो बाबा हमेशा कहता है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। हम जब तक ये समझते मैं कर रहा हूँ, मैं ये है, तो मैं तो निमित्त नहीं बन पाते, वो कमजोरी हो जाती है। और जब मैं, मेरा कुछ नहीं, सब बाबा आपका, आप करण करावन आ रहे हो, आप करवा रहे हो, मैं तो सिर्फ कर रहा हूँ, तो बस बाबा करावन आ। और दूसरी तरफ हम ये समझे जब कोई कर्म करते हैं कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, ये कर्मेंद्रियां ये मेरे कर्मचारी हैं, आंख नाक कान हाथ इनके द्वारा मैं ये कर रही हूँ, तो है साधारण सी बात, लेकिन उस वक्त समय प्रति समय ये याद आना चाहिए। बाबा कहता है पॉइंट बच्चों के पास बहुत है, खजाने, लेकिन क्या करा है, लॉकर में बंद करके रखे हुए, लॉकर में ऑर्नामेंट गहने भी बहने रखते हैं, ठीक है सेफ्टी के लिए, लेकिन जब कभी विशेष अवसर होता है लॉकर में से ऑर्नामेंट गहने निकाल के पहनते हैं और फिर श्रृंगारित होकर के कोई भी प्रोग्राम में निमित्त जाते हैं। तो ऐसे ही हमें भी बाबा को कौन सा श्रृंगार प्रिय है जो हमें निमित्त और निर्माण बनने में बहुत सहयोग दे, कौन सा श्रृंगार प्रिय है बाबा को, हाँ? बाबा ने कई बार मुरली में बताया बाबा को तीन श्रृंगार प्रिय है। कौन से तीन श्रृंगार? पहला श्रृंगार है ताज, बच्चे सिर पर ताज धारण करें। एक होता है पवित्रता का ताज, जो लाइट का ताज देवी देवताओं के चारों तरफ देखते हैं, और दूसरा और भी जिम्मेवारी का ताज इस समय बाबा ने हम बच्चों के सिर पर जो रखा है वो ताज, प्योरिटी का ताज। और रतन जड़ित ताज तो सतयुग में मिलेगा ही, जितना यहाँ प्योरिटी का ताज होगा उतना बड़ा वहाँ रतन जड़ित ताज मिलेगा। तो एक तो ताज अगर होता है तो व्यक्ति अलग ही नजर आता है, श्रृंगारित अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है। दूसरा तिलक, बाबा ने कहा तिलक कौन सा, बाबा ने कहा आप ये तिलक सदा स्मृति में रखो, मैं कौन हूँ। आत्मा का तिलक जैसे यहाँ लगाते हैं तो बाबा ने कहा मैं जो सृष्टि की समस्त आत्माएं, मैं सबका पूर्वज और पूज्य स्वरूप, वो तिलक सदा स्मृति में रखो। पूर्वज होते हैं, बड़े होते हैं, वो बच्चे जैसा काम तो करेंगे नहीं, छोटा मोटा। तो ऐसे ही बच्चे तो खिलौने से खेलते अच्छे लगते हैं, कोई बड़ा अगर खेले खिलौने से और बच्चे जैसी हरकत करे कैसा लगेगा। तो मैं सब इन सबका पूर्वज हूँ। जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, बीज होता है ना, तो बीज को जमीन में बोते हैं तो फिर बीज से पेड़ निकलता है, पौधा निकलता है, बड़ा होता है, तना निकलता है और बड़ा होता है, अंत में फल फूल वगैरह सब लगते हैं। तो ऐसे बाबा ने हमें पूरी स्मृति दिलाई हुई है, आप बच्चे भी पूर्वज और पूज्य हो। पूर्वज हैं तभी तो बीज में कल्प वृक्ष में दिखाया ना, नीचे जड़ में बाबा ममा और अष्टतन और वो बैठे हैं। तो अपने को भी सदा समझो, मैं ऐसा पूर्वज हूँ पूरे सृष्टि की आत्माओं का। और इस कारण से जो है मैं इन सब का पूज्य हूँ और ये सब मेरे वंशज हैं। तो वो होते हैं तो क्या होता है, बीज तो नीचे ही होता है, वो नीचे अंधकार की तरफ जितना जितना बीज जाएगा उतना उतना पौधा ऊपर प्रकाश की तरफ जाएगा। तो हम बीज स्वरूप आत्माएं हैं, तो दुनिया के जो देखने में जो वैभव है, जो दुनिया के देखने में चीज आती है, उनकी तरफ आकर्षित ना हो। अंधकार यानी कि प्रकाश बीज अगर ऊपर ही पड़ा रहा, लाइट रहा, तो बीज फलीभूत नहीं होगा। बीज को अंदर ही जाना जरूरी है, और अंदर ही अंधकार में जब होता है तब पानी जल दिया जाता है अंधकार, तब वो बढ़ता है। तो ऐसे ही सृष्टि की समस्त आत्माओं को मैं आत्मा साधारण रीति से ही जैसे सकाश देती रहूं। एक ये है। और बाबा ने क्या बताया, जितना जितना ये निमित्त भाव बढ़ेगा हमारा, मैं निमित्त हूँ बाबा ने बताया, आप तने भी हो और बस आपसे ही ये सारी शाखाएं विभिन्न धर्मों की, विभिन्न जो अलग अलग हैं मठ पंथ संप्रदाय सबके निकले हैं, और आप सबके पूर्वज और पूज्य। तो इस तरह सतयुग त्रेता में तो हम देवी देवता होते हैं, फिर और द्वापर युग में पूज्य हो गए, हमारी मूर्तियों की, जड़ मूर्तियों की भी जब आज लोग पूजा करते हैं, तो मैं तो चैतन्य हूँ अभी, मेरी तो जड़ मूर्तियाँ हैं मंदिर में। सदा कभी भी मंदिर में जाएं, कभी देखें किसी भी चित्रों को, बस वो नशा हो, जैसे शीशे में अपने को देखते हैं, अपने को सेटअप करते हैं, श्रृंगारित करते हैं, ऐसे ही ये नशा हो कि मैं जो है आत्मा मैं हूँ और ये मेरे भक्त है, भक्तों की लाइन मेरे चित्र जड़ चित्र के सामने लगती है। वो कब लगेगी, अभी इसलिए लग रही है कि अभी बस अंत का अंत समय आया, अब उन्हीं भक्तों की लाइन चैतन्य में मेरे सम्मुख लगने वाली है और लग रही है। इसीलिए बाबा कहता है अपना चेहरा, हाँ चाल चलन और चेहरा ये ऐसा रखो, दिव्य रखो। कहते भी हैं लौकिक में, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मन के अंदर जो विचार चलते हैं वो ही चेहरे पर आते हैं। मन में खुशी की लहरें होंगी, बहुत खुश होंगे, चेहरा भी खुशनुमा होगा, सब कहेंगे अरे भाई बहुत खुश हो, क्या तुम्हें मिला है। और कभी क्रोध की बात होगी किसी से, अभी की बात नहीं पुरानी बात भी अगर याद आई मन में, तो चेहरे पर भी वो ही ऐसा भाव आ जाता। तो इसीलिए श्रृंगार होने के लिए ये ताज तिलक और तीसरा क्या है, तख्त, बाप दादा क्या दिल तख्त, उस पर हम सदा विराजमान रहे। तो जो दिल तख्त पर है विराजमान, तो बस बाबा भी उसके सदा साथ साथ। तो इसीलिए एक ये बात रखे जो बाबा ने बताया, जो पेपर आएंगे। बाबा कितना कल्याणकारी अभी से ही बता दिया बाबा ने जैसे। हाँ क्यों, हर आत्मा को उसने, अब माया के कैसे रूप आएंगे, बड़े मोहनी रूप में माया आएगी। मोहनी रूप में कैसे आएगी माया, बहुत सबके प्रति बाबा ने कहा है स्नेह रखो, प्यार रखो, प्रेम रखो, वो तो रखना है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें भी डिफरेंशिएट करना है कि हर आत्मा के हैं, उसको भी किसी ने कोई गुण है, शक्ति है, बहुत मददगार है सेवा में, सब चीज में, तो इनके लिए बाबा ने पहले ही बता रखा है उसकी तरफ, ये गुण शक्ति ये सब देने वाला भी कौन है, बाबा है, तो उसके तरफ आकर्षित, सबकी तरफ हम समान भाव रखें। जो कबीर दास जी भी होके गए ना, उसका सुना होगा ना ज्ञान में, कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अंत समय में यादी जब प्राण तन से निकलते हैं, अंत मते सो गति होती है, तो वही व्यक्ति याद आते हैं जिनसे बहुत प्यार होता है, बहुत स्नेह होता है, या कोई दुश्मनी होती है, उनकी वो बातें याद आते हैं, तो उससे क्या है, उधर वैसे बुद्धि चली जाएगी, फिर सदगति तो होगी नहीं, अंत मते सदगति की बजाय दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए स्नेह सबसे रखना है, जहां अगर किसी से स्नेह ज्यादा है, अति स्नेह है, तो जरूर कोई दूसरा है जिससे अति दुश्मनी भी है, वैर भाव भी है, उसकी निगेटिव भावनाएं से भी हम प्रभावित है। इसीलिए बाबा ने कहा है, एक तो ये रखो निर्णय शक्ति, देखने की शक्ति ऐसी हो, और साथ साथ जब निर्णय कर लिया कोई बात हो गई, तो दूसरा कौन सा और चाहिए, सामना करने की शक्ति। आप कोई पेपर आया, परख लिया ये पेपर है ये माया, फिर उसका सामना करके विजयी भी तो बन सके। तो इसीलिए बाबा ने कहा है, बस बाबा का हाथ और साथ, और ये तभी होगा जितना हम बाकी समय भी निमित्त और निर्माण भाव में रहेंगे। मैं निमित्त आत्मा हूँ, बाबा मेरे द्वारा ये कार्य करा रहा है, और सामना करने के लिए इसीलिए बाबा ने शब्द दिया, आओ बाबा, कोई परीक्षा आती है, पेपर आता है, आओ बाबा आओ, मेरे मदद करो, मेरा सहयोग करो, बाबा मुझे इस पेपर से निकालो। बस हमने तो अपने जीवन में सैकड़ों बार हजारों बार अनुभव किया है, बस बाबा को याद करने की देरी होती है सच्चे दिल से, और किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना के, कोई परिस्थिति को बदल करके, किसी न किसी रीति से बाबा उस परीक्षा की परिस्थिति से विजयी बनाकर बाहर निकाल लेता है। और बाबा बंधा हुआ है, बाबा ने कहा मैं बंधा हुआ हूँ बच्चों को विजयी बनाने के लिए, बस उनका बुद्धि योग जो है क्लीन क्लियर, मैं जब टच करूं तो उन्हें वो ही बात याद रहे। एक तो ये बाबा ने निमित्त और निर्माण भाव लाने के लिए, स्वतः ही ऐसे होता है। बाबा भी कैसे, अंत समय में कहना तो बड़ा आसान है, कोई याद ना आए, व्यक्ति भी याद ना आए, कोई संबंधी याद ना आए, कोई परिस्थिति, लेकिन याद आती है तो क्या करें, कैसे उससे पार हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा, उसके लिए ही कहा है, मन जीते जगत जीत, मन को ना पर विजय प्राप्त करो, समेटते रहो। हम सारा दिन भर तो लौकिक में बिजी रहे, बहुत लौकिक का काम है, ये है वो है, धंधे में व्यस्त रहे, परिवार में, बच्चे पोतों में, पोतियों में, और जब योग लगाने बैठे और समझे वाह योग लग जाए मेरा बहुत बढ़िया, नहीं लग सकता। पूरे दिन की दिनचर्या का उस समय भी उस पर पूरा प्रभाव रहेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, बाबा ने बताया हुआ है, मन को जैसे बाबा ने जीता, तो पहले स्वमान में स्थित हो और फिर सोमान में स्थित होकर के मन को बाबा से लगाओ, जैसे बाबा ने मन को पत्र लिख करके, मन अब मैं तेरे वश में नहीं, अब तुझे मेरे अंडर में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है। मंत्री हमेशा राजा के वश में रहता है, तो ऑर्डर करो उसे। भक्ति मार्ग के तो ये ना बोले क्या करे, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम ऐसा कमजोरी के संकल्प के वशीभूत हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी एक इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी ये करो, हर तरफ से समेटते जाओ। मैंने भी ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा के साथ 5-6-7 साल रहने का सौभाग्य भी मिला। 62 में ज्ञान में आए और बस उसके बाद, ये तो इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन एक दो मुख्य बात कि बाबा को हम देखते, पहले बाबा मिलते थे बहुत, आओ बच्चे बैठो, बाबा घुमाने भी ले जाते थे, धीरे धीरे बाबा समेटते जा रहे थे। और फिर बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि दी और हाथ बढ़ा के, आओ बच्चे, आओ स्वीट बच्चे, तो बाबा ऐसे हाथ फैला देते थे और हम चुंबक की तरह बस बाबा की बाहों में खींच के चले आते थे और विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, देह का भान ही नहीं रहता था। पहली पहली बार में तब जानते भी नहीं थे कि देह अभिमान क्या होता है, देही अभिमानी स्थिति क्या होती है, लेकिन उसका अनुभव होता था क्योंकि बाबा की शक्ति काम कर रही होती थी। बाबा दृष्टि देते थे, उड़ जाते थे, फिर थोड़ी देर तक उसका आनंद लिया, फिर बाबा हाँ बच्चे आओ, आओ आओ बच्चे, जैसे बाबा, फिर कोई आत्मा जाती नहीं है शरीर से, लेकिन फिर बुला करके फिर उसके बाद हालचाल पूछता था, टोली खिलाते थे, फिर दूसरा वो जाता था, फिर दूसरा आता था, हर एक ये अनुभव करता था। बाद में अंत के 2-3 साल में फिर और ऐसे गोदी में ना आए, गले से ना मिले, क्योंकि इन्फेक्शन लगने का भी, बाबा की भी 93 ईयर्स आयु थी और बाहर से सब तरफ से बच्चे आ रहे हैं, किसी में कोई भी थोड़ा इन्फेक्शन होने लगे तो बाबा दृष्टि ही देता था, और दृष्टि देते ही ना वो बच्चे इस अनुभव में आ जाते। तो हमें भी फॉलो फादर करना है ना, तो इसीलिए फॉलो फादर तभी होंगे, हमारे सम्मुख भी जब कोई आए उसे देह अभिमान का भान भूल जाए, देह का भान, हमारे देह के प्रति कुछ भी नहीं, देही बस देखे और हमारे से दिव्यता की फीलिंग हो, अलौकिक फीलिंग हो, उसे अशरीरी पने की भी उसे फीलिंग हो, ऐसा हमारा ऑरा, लाइट का ऑरा होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने भी ऐसा कैमरा बनाया है, मुझे भी विश्व के कई स्थानों पर जाने का मौका मिला, और जब मैं रशिया में था, रशिया में गया तो वहाँ पर वही किरलियन नाम का एक फोटो, वो साइंटिस्ट होके गया, उसने ऐसा कैमरा बनाया हुआ है, तो व्यक्ति के फोटो के साथ साथ उसका ऑरा का लाइट भी आ जाता है। और जो पॉजिटिव विचारधारा के होते हैं, प्रेम स्वरूप आत्मा के गुणों में स्थित होते हैं, उनका ऑरा लाइट स्वरूप, जैसे देवी देवताओं के पीछे हम देखते हैं कृष्ण जी, राम है, हनुमान है, देवी देवता, गुरु नानक देव जी है, बौद्ध है, कोई भी महान आत्मा है जो होके गई है, लाइट का क्राउन दिखाते हैं जैसे, तो ऐसा ही हमारा भी उन्हें अनुभव होगा। मैं भी जब गया तो मुझे बहन जी ने बताया, क्योंकि भाई प्रोफेशन मैं भी साइंटिस्ट हूँ, इंजीनियर टेक्निकल, तो उस भाई को बुलाया जो किरलियन फोटोग्राफी करता था, और उसको पूरा दिन वो साथ में रहा, उसने सब जगह के ऑरा निकाले, हर शरीर के पार्ट का, यहाँ भी और पूरा एक एक उंगलियों का, और बस फिर उसने रिपोर्ट भी उसकी बनाई और वो भी रिपोर्ट भी लगभग 100 पेज की थी। और उसने एक बात बताई, हम सबके लिए गौरव की बात है कि मेरे पास दुनिया भर के सब लोग आते हैं, अलग अलग धर्म के, मठ के, संप्रदाय के, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों वाले जब आते हैं, दादियां आती हैं, भाई बहन वरिष्ठ आते हैं, और जब मैं उनका ऑरा निकालता हूँ तो जितना बढ़िया और लाइट का ऑरा उनका होता है, उतना दुनिया में और किसी का नहीं होता। तो देखो, बाबा ने भी कहा है ना, विज्ञान आपकी बात को प्रूफ करेगा। ऐसे ऑरा इन आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन उस कैमरा से उसका फोटो आता है। अंत में और वैज्ञानिक आएंगे, अभी तो वो बोलते हैं दुनिया वाले, हाँ ये भी एक संस्था है, ये भी है, फिर वो बोलेंगे हाँ ये ही है जो कि भगवान का ज्ञान देते हैं। अब वो समय आ गया है, लेकिन उसकी प्रत्यक्षता के लिए भगवान ने आपको और हमको, हम सभी बच्चों को निमित्त बनाया है। हम सब बच्चों के नैनों में आकर हमारा ऑरा देखेंगे। जब भक्ति मार्ग में हमारे जो वो रहे हैं, भक्ति मार्ग में हम ही ने तो भक्ति शुरू की द्वापर युग से, और पूजा की, और साधु सन्यासी, जब उनका ऑरा ऐसा होता था कि हिंसक प्राणी भी आते थे वो दूर ही ठहर जाते थे, पास आने का साहस ही नहीं होता था उनका। तो ऐसा हमारा भी ऑरा दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे हमारे मन में भाव होंगे, जैसा हमारी निमित्तपन की स्टेज होगी, निर्माण भाव होगा, वैसा ही हमारा ऑरा उन्हें नजर आएगा दुनिया को। और बस बाबा ने कहा है वो आएंगे, वो रोती हुई आत्मा आए, आपको देखेंगे, हंसते हुए चले जाएंगे, और अशांत आत्मा आएंगी, आपके चेहरे पर देखेंगे, शांति के अनुभव करते चले जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? निमित्त और निर्माण भी कब बनेंगे? बाबा को सबसे प्रिय चीज कौन सी है? सबसे प्रिय श्रृंगार तो पता चल गया, ये तीन चीजों है। सबसे प्रिय चीज बाबा को कौन सी है? बाबा ने बताया सत्यता, ट्रूथफुल। इसीलिए कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। जितना हम सत्य होंगे, अंदर बाहर से साफ होंगे, तो क्या होगा? बाबा भी, इसीलिए गॉड इज ट्रूथ बोलते हैं, भगवान का नाम ही है सत्यम शिवम सुंदरम। इसीलिए जब ये नाम है और ऐसा, तो जो जैसा होता है उसे वैसा ही, उसके साथ मित्रता होती है, प्रिय होता है। तो भगवान खुद सत्य है, उसका सागर। तो हम बच्चे भी जितना जितना सत्य स्वरूप होते चले जाएंगे, उतना उतना भगवान के, बाबा के नजदीक आते चले जाएंगे। और जितना बाबा के नजदीक आएंगे भगवान, तो सत्य स्वरूप, तो इसीलिए वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये निमित्त और निर्माणता का ये गुण आता रहे। उस गुण के लिए एक तो सत्यता को अंदर धारण करें, और क्या धारण करें? बाबा ने कहा जो महान आत्माएं होती है ना, उनके अंदर कई गुण शक्तियां होती हैं, लेकिन एक गुण सबसे बड़ा होता है, कौन सा? क्षमा का गुण। आज क्षमा करना ही तो मुश्किल है, क्योंकि कोई भी आत्मा निगेटिव, सारा संसार ही नकारात्मक है, हर तरफ निगेटिविटी है, विकार है। तो इसीलिए वो निगेटिविटी की भावना हमारे अंदर ना हो, तो जितना हम विजयी स्वरूप रहेंगे, उतना उतना हमारा लाइट और माइट, उसका दर्शन लोग करते रहेंगे। और देवता हम कैसे बनेंगे? मुझे याद आती है बाबा की बात, मेरे साथ की ही घटना है। साकार बाबा से जब पहली बार मिले ना, तो हमारा लौकिक नाम में जैसे श्री है, भाई श्री गोपाल होता है, श्री राम होता है, श्री अलग अलग, तो श्री नाम का फर्स्ट रूप। तो बाबा से मिले, बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे, तो हमने बताया। तो फिर बाबा ने कहा क्या नाम बच्चे, मैंने थोड़ा लाउडली बोला कि ये श्री। तो बाबा, तो यही खूबी थी साकार बाबा में, बच्चों, तब तो मैं बहुत युवा था, 16 साल का था, 16-17 साल का। तो बाबा ने बताया, बोला अरे दादी आओ आओ, आओ दीदी आओ, आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो बाबा से भी ऊंच है, महान है। ऐसा हो सकता है? नहीं। हमने कहा बाबा तो लौकिक शब्दों में उसका कोई शब्द होगा, लेकिन बाबा तो जैसे मेरी खिंचाई कर रहे हैं। वो पहली बार तो बाबा ने उसका रहस्य बताया कि देखो अभी श्री बाबा भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता ब्रह्मा बाबा। क्यों? क्योंकि श्री उसको बोलते हैं जो देवी देवता लक्ष्मी नारायण राम सीता, श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री कृष्ण श्री सीता, श्री जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, वो श्री लगा सकता है। अभी न हमारी आत्मा पवित्र है न शरीर, शरीर विकारों की उत्पत्ति है और आत्मा ने भी इतने 84 जन्म लेते लेते अनेक जन्मों में पता नहीं कितने भी कर्म कर दिए, तो इसीलिए अभी श्री नहीं लगा सकते। तो बाबा तुम्हारा नाम, फिर बाबा ने कहा अभी मोहन देता है तुम्हें, अभी संगम युग पर मोहन, सतयुग में जाकर श्री लगाना। तो बाबा ने नाम बदल दिया। तो देखो कितना खुशी की बात हमारे अंदर आया। तो ऐसा जब स्थिति होती है तो बाबा हर बच्चे को क्या करता है? आप सोचोगे अभी तो बाबा है नहीं, मेरा नाम कैसे बदलेंगे? बाबा ने सबका नाम आपके सबका बदल दिया है, जीवन बदल दिया सबका, और वो नाम ऑटोमेटिकली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। इतने ऊंचे हम हो गए हैं तो सबका नाम तो बदल ही गया ना। तो इसीलिए हम सब ब्रह्मा वत्स, कितने ऊंचे कितने महान हैं। तो एक ये धारण करें, तो लक्ष्य ये रहे अगर हम अंत मते सुगते में जाना चाहते हैं, और जैसा आजकल टॉपिक है निमित्त और निर्माण, तो वो जैसी परिभाषा है उस अनुसार तो बने ही, लेकिन साथ साथ हर तरफ से समेटते हुए चले। जितनी बुद्धि का फैलाव होगा उतनी वो बातें याद आएंगी। इसलिए बुद्धि के फैलाव को, बिजनेस है उसे समेटें, सेवा का भी है, सेवा करनी है, लेकिन उस तरफ बार बार बुद्धि न जाए। हम योग लगाने बैठे, विकर्म भस्म करने बैठे, और बुद्धि अगर सेवा की वहाँ सेंटर पर, वो जिज्ञासु वो बातें याद आएंगी, तो फिर तो विकर्म तो भस्म होंगे नहीं। तो इसीलिए मन पर उतना नियंत्रण होना चाहिए। तो तन और मन ये दोनों पवित्र होने चाहिए। मन तो करते हैं, तो इसीलिए मैंने देखा मन का पता कैसे चलेगा हमारा मन पवित्र है। तो हमेशा तो बाबा से मिलते थे, बाबा हालचाल पूछते थे, हम कोई प्रश्न पूछते थे बाबा जवाब देते थे। लेकिन हमें एक सौभाग्य खास मिला है, अंतिम दो दिनों में मधुबन में बाबा के साथ रहने का, 17 और 18 जनवरी 1969 बाबा की कर्मातीत अवस्था अपनी आंखों से देखने का। और वो कर्मातीत अवस्था में हमने ये देखा, अंतिम दो दिनों में जब बाबा के सम्मुख गए, बाबा के सामने जाते थे, बाबा ने ऐसे दृष्टि दी और तो 7:30 तक योग होगा ना बताया, तो उसके अंदर ये बताया कि बाबा देखते थे, दृष्टि देते थे, और दृष्टि देते देते बाबा अंदर का हाल जान जाते थे। बस बाबा कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं बोलती थी। तो ये है मन के हारे हार है मन के जीते जीत। बाबा ने अपने मन को इतना जीत लिया था कि अपने मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं होता था, और दूसरे के मन का हाल तभी हम जान सकते हैं जब हमारे मन में व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे। तो एक ये हमें भी तो संपूर्ण सबको बनना है ना, तो इसीलिए हमें अपने मन को ये चेक करना है, व्यर्थ मन में नहीं। एक मूर्तिकार बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, तो लोग बड़ी महिमा करते थे, अरे भाई आप तो बहुत अच्छी मूर्ति कैसे बनाते हो? कि नहीं मैं मूर्ति तो नहीं बनाता, मैं क्या करता हूँ, तो पत्थर लिया, उसके चारों तरफ जितना भी वेस्ट है व्यर्थ है वो निकाल दिया, मूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो जाती है, क्योंकि व्यर्थ निकल गया मूर्ति अपने आप। बस हम सबके अंदर भी हमारी संपूर्ण मूर्ति निहित है, जैसे बाबा समय प्रति समय सूक्ष्म वतन में अब संपूर्ण ब्रह्मा से अपने को कंपेयर करते थे, तो सूक्ष्म वतन वो तो अलग, अभी बाबा कहता है सूक्ष्म वतन अलग नहीं, उस सूक्ष्म वतन को ही अपने अंदर लाओ और अपने अंदर ये संपूर्णता की धारणा करो। तो जितना जितना ये धारण करते चलेंगे, तो एक बात तो ये देखी हमने 17-18 जनवरी को, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत बनना है ना, तो इसीलिए कर्मातीत अवस्था को हमें ये धारण करना है। दूसरी बात, बाबा चूंकि समेटता जा रहा था तो बाबा को स्पष्ट हो गया था, बस 18 जनवरी को आज जैसे मेरा अंतिम दिन है बच्चों के साथ, तो बाबा ने सब रहे हुए काम पूरे कर लिए, जो भी पेंडिंग काम थे, जो पत्र लिखने बाकी थे वो पत्र लिख दिए, जो बाबा को ना रोज क्लास रात को 9 बजे होती है, उस दिन बाबा ने बोला सबको सब भोजन करके आओ और 7 बजे बाबा क्लास कराएगा 7:30, तो सब भोजन करके आ गए और बाबा ने उस दिन जल्दी क्लास करा दी, बाबा को आभास हो गया था बस आज बच्चों के साथ ये अंतिम दिन है। ऐसे हम लोग भी जब शरीर छोड़े ना, हमें भी आभास होना चाहिए, दुनिया की तरह अगर मर गए शरीर छोड़ा तो हमारे में और दुनिया वालों में अंतर क्या हुआ, ये होना ये चाहिए कि हमारे अंदर ये संपूर्णता हो, तो वो संपूर्णता की स्थिति धारण करके चलते रहे। तो इस तरीके से ये संकल्प हम अपने अंदर रखे कि बाबा मुझे भी आपकी तरह कर्मातीत बनना है। तो ये तो मन की बात रही, बाबा ने मन को इतना पवित्र कर दिया, और तन के लिए बाबा ने तन जब शरीर छोड़ा 18 जनवरी को क्लास करा के गए बाबा, और अपने कमरे में जाके दादी जी के हाथ में हाथ और देह त्याग किया, तो बाबा का तन तो ये 5 तत्वों का बना है, तो हमें इन 5 तत्वों को भी पवित्र बनना है, करना है ब्रह्मा बाबा की तरह। और बाबा ने ये प्रत्यक्ष देखने को मिला, 18 जनवरी की रात को शरीर छोड़ा, सारी रात भर शरीर रखा रहा, 19 तारीख रखा रहा दिन भर, 19 की रात, 20 का सारा दिन रखा रहा, 20 की रात को भी रखा रहा, 21 को दोपहर के बाद संस्कार किया गया, क्योंकि बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी जी बाहर टूर पर थे, उनके आने का इंतजार हो रहा था। लेकिन बाबा का शरीर ना कोई इंजेक्शन दिया गया था, ना कोई केमिकल लोशन लगाया गया था, वैसे ही चमकता रहा, कोई दुर्गंध नहीं हुई, कोई शरीर में डिटोरिएशन नहीं हुआ। तो ये है बाबा ने अपने 5 तत्वों के शरीर, इन तत्वों को भी इतना पवित्र कर दिया। तो हम मन को तो रोज पवित्र कर ही रहे, योग लगा रहे हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन 5 तत्वों को भी हमें रोज योग का दान देना है। जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये जो तत्व हैं, इन सब को योग का दान देना है। कैसे दान देना है, इसका जानकी दादी का बहुत, दादी से हम पूछते थे जब दादी, ये है जब ये सेंचुरी शुरू हुई 1999 का आखिरी दिन 31 दिसंबर, जानकी दादी आए बाबा से मिलने, लेकिन तबीयत खराब हो गई तो अहमदाबाद में थे लोटस में, बहुत तबीयत खराब हो गई, डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब जिसको भी बुलाना हो कर लो, कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बाबा आए हुए थे, 31 दिसंबर को बाबा आते हैं ना, तो आए हुए थे, तो मुरली के बाद बाबा से निर्वैर भाई साहब और हमारी प्रकाशमणि दादी, बड़ी दादी मिले, और बाबा को बताया कि बाबा दादी की, जानकी दादी की तबीयत वहाँ बहुत खराब है और डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है। बस बाबा ने तो देखा, दृष्टि दी, नहीं बच्ची, उस बच्ची को कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है, बाबा ने बोला। और देखो दादी जी की तबीयत उसी क्षण से ही इधर बाबा ने बोला उधर ठीक होने शुरू हो गई, और अगले दिन वो आ भी गए इधर, और यहाँ पर आकर के उन्होंने जैसे उसके बाद 20 साल तक और उन्होंने विश्व की सेवा की। तो देखो ये प्रकृति जीत आत्मा है। ब्रह्मा बाबा की बात सुन के तो हम ये बोले कि पता है बाबा तो भी बाबा था, लेकिन ये जानकी दादी तो हमारे आप सबके बीच की ही एक आत्मा थी ना। आप में से बहुत सबने बहुतों ने देखा भी होगा, तो हमें मन जीते जगत जीत के साथ साथ प्रकृति जीते जगत जीत, इन पांच तत्वों को भी रोज हमें योग का दान देना है, पवित्र करना है। और जितना जितना हम इन्हें पवित्र करते रहेंगे उतना उतना ये तत्व हमारे साथ रहेंगे, और अंत तक, अंत में जब अर्थक्वेक होगा, फ्लड होगा, विनाश होगा, जल का आकाश मार्ग से वो आएगा, रॉकेट आएंगे, मिसाइल आएंगे, तो हमें ये करना है। अच्छा, ओम शांति। हम सभी को भी प्रकृति जीत और मन जीते जगत जीत बनना है।